19, text number 42.
आज हम स्कंद संख्या 8, श्लोक अध्याय संख्या 19, श्लोक संख्या 42 पर चर्चा करेंगे।
अत्यायतः
अत्यायतः
पूर्णम
पूर्णम
अभ्यात्मम
अभ्यात्मम
यश्च
यश्च
नित्यानृतम
नित्यानृतम
वचः
वचः
सर्वम
सर्वम
नित्यानृतम
नित्यानृतम
ब्रूयात
ब्रूयात
सा
सा
दुष्कीर्ति
दुष्कीर्ति
स्वासन
स्वासन
मृतः
मृतः
अत्यायतः पूर्णम अभ्यात्मम
अत्यायतः पूर्णम अभ्यात्मम
अत्यायतः पूर्णम अभ्यात्मम
अत्यायतः पूर्णम अभ्यात्मम
यश्च नित्यानृतम वचः
यश्च नित्यानृतम वचः
सर्वम नित्यानृतम ब्रूयात
सर्वम नित्यानृतम ब्रूयात
सा दुष्कीर्ति स्वसन मृतः
सा दुष्कीर्ति स्वसन मृतः
अत्यायतः पूर्णम अभ्यात्मम
अत्यायतः पूर्णम अभ्यात्मम
यश्च नित्यानृतम वचः
यश्च नित्यानृतम वचः
सर्वम नित्यानृतम ब्रूयात
सर्वम नित्यानृतम ब्रूयात
सा दुष्कीर्ति स्वसन मृतः
सा दुष्कीर्ति स्वसन मृतः
Next.
अत्यायतः पूर्णम अभ्यात्मम
यश्च नित्यानृतम वचः सर्वम नित्यानृतम ब्रूयात
सा दुष्कीर्ति स्वसन मृतः
सा दुष्कीर्ति स्वसन मृतः
On the board. Why didn't you tell me?
अत्यायतः पूर्णम अभ्यात्मम
अत्यायतः पूर्णम अभ्यात्मम
यश्च नित्यानृतम वचः
यश्च नित्यानृतम वचः
सर्वम नित्यानृतम ब्रूयात
सर्वम नित्यानृतम ब्रूयात
सा दुष्कीर्ति स्वसन मृतः
सा दुष्कीर्ति स्वसन मृतः
अत्यायतः पूर्णम अभ्यात्मम
अत्यायतः पूर्णम अभ्यात्मम
यश्च नित्यानृतम वचः
यश्च नित्यानृतम वचः
सर्वम नित्यानृतम ब्रूयात
सर्वम नित्यानृतम ब्रूयात
सा दुष्कीर्ति स्वसन मृतः
सा दुष्कीर्ति स्वसन मृतः
Translation. Well, before I read the translation, I need to give some context here to understand.
अनुवाद पढ़ने से पहले हमें इसकी भूमिका समझनी होगी कि यहाँ पर क्या घटना चल रही है।
So before we go any further, let's say the Guru Parampara pranams, please.
नमः विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया शुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavasya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitasya Hiso Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namastute Tat Kanchan Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishbhanam Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Santubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gauri Bhakta Vrinda
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottama Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirae Nashta Prayeshva Badreshu Nityam Bhagat Sevaya Bhagavati Uttam Ashloke Bhaktir Bhakti Nashtiki.
So I'm going to read the 41st verse so you see the context for 42.
तो अब मैं 41 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़ूंगा ताकि आप आगे का समझ सकें कि 42 और 43 में क्या दिया है।
This is Shukracharya speaking.
यहाँ पर शुक्राचार्य कह रहे हैं ये श्लोक।
Shukracharya is the guru of Bali Maharaj.
शुक्राचार्य बलि महाराज के गुरु हैं।
Shukracharya is a partial expansion of Lord Shiva.
शुक्राचार्य भगवान शिव के एक अंश अवतार हैं। और यहाँ पर वो एक भौतिक भौतिकतावादी आचार्य का रोल कर रहे
हैं
जो कि बहुत ही प्रतिष्ठा और अपनी अवस्था के प्रति बहुत आसक्त हैं और मन से बहुत आसक्त पैसे से बहुत आसक्त हैं यश से बहुत आसक्त हैं सम्मान के प्रति और आरामदायक जीवन के प्रति आसक्त हैं
He is what's known as a sakama personality.
और वो एक सकाम व्यक्ति हैं।
Sakama means one who is on a spiritual path, but they're full of material desires.
सकाम का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो कि अध्यात्म के मार्ग पर है, लेकिन उसकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं।
The word kama is well known to mean lust.
काम का सामान्यतः अभिप्राय काम से होता है।
But in a broader sense, the word kama means desire also.
लेकिन काम का अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उसका अर्थ इच्छा से भी लिया जा सकता है।
So kama, sakama means who is having all kinds of material desires.
सकाम का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं।
But they may be on the path of civilization anyways.
फिर भी वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर हो सकते हैं।
So Shukracharya is such a personality like that.
तो शुक्राचार्य उसी प्रकार के व्यक्ति हैं।
Perhaps the most powerful yogi in the universe.
और वे सबसे ज्यादा शक्तिशाली योगी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में।
Bali Maharaj was the king of the demons.
बलि महाराज राक्षसों असुरों के राजा थे।
And so Shukracharya was trying to advise him.
और शुक्राचार्य उन्हें सलाह देते थे।
When Lord Brahmana appeared, Lord Vishnu appeared in a Brahman boy incarnation, Vamana Deva.
तो जब भगवान विष्णु एक ब्राह्मण बालक के रूप में वामन देव के रूप में प्रकट हुए
a trick.
तो उन्होंने एक ट्रिक किया उन्होंने छल किया लेकिन दुर्वासा मुनि बहुत चतुर शुक्राचार्य बहुत चतुर हैं
and he could understand that this Brahman boy was Lord Vishnu in disguise.
तो वे शुक्राचार्य समझ गए कि ये जो ब्राह्मण बालक है ये छिपे हुए रूप में भगवान विष्णु है
So the incarnation Vamana Deva is asking for three steps of land.
और वामन अवतार यहाँ पर तीन पद भूमि मांग रहे हैं।
Shukracharya is warning, no, this is दिस डोंट डू दिस
और शुक्राचार्य उन्हें मना कर रहे नहीं नहीं ये साधारण बालक नहीं है इसे मत दो
First with one step, he will take half the universe.
तो एक पहले पग में वो आधा ब्रह्मांड नाप लेंगे
the other step, he will take the other half of the universe.
और दूसरे पग में वे दूसरा जो बचा हुआ आधा भाग है ब्रह्मांड का वो नाप लेंगे
third step, he won't be able to deliver because already the whole universe, he will take.
तो और वो तीसरा पैर नहीं रख सकेंगे क्योंकि पूरा ब्रह्मांड दो पग में कवर कर लेंगे और क्योंकि फिर आप ब्राह्मण के प्रति वचन का पालन नहीं कर पाएंगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा
But what he's really trying to do is trying to stop Shukracharya he's trying to stop Bali Maharaj from giving in charity to Lord Vishnu because then he's afraid he's going to lose his job
तो यहां पर शुक्राचार्य भगवान विष्णु को बलि महाराज को तीन पग भूमि का दान देने से मना कर रहे हैं भगवान विष्णु को क्योंकि इससे उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी
you know somebody in a big corporation somebody in a big corporation some from body from outside comes and makes a takeover offer happens all the time in business a takeover offer and such you know millions of course I'll buy your business no problem
तो बाहर बड़ी-बड़ी कंपनियों में हम देखते हैं कि कोई बाहर से व्यक्ति आता है और उस पूरे की पूरी कंपनी को का मालिक बन जाता है
somebody's trying to tell the CEO no don't do it because that man is a
और उस समय कोई सीईओ जो कंपनी का सीईओ है उसे कोई सलाह देगा नहीं नहीं तुम इसे मत दो क्योंकि ये तुम्हें छल कर लेगा तुमसे तो वो व्यक्ति सलाह इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर दूसरा छली छल करने वाला व्यक्ति सारा बिजनेस ले लेगा तो उसकी भी नौकरी चली जाएगी
Well, this is Shukracharya's position that he's not any better than this materialistic advisor to a CEO of a multi-four company not any better than that actually
और शुक्राचार्य की भी यही स्थिति है जैसे कि एक भौतिकतावादी सलाहकार हो जो कि बहुत बड़ी कंपनी में सलाह देता हो
So this is what he was advising in text 41. This he's giving his advice to Bali Maharaj.
और इसी प्रकार की सलाह श्लोक संख्या 41 में शुक्राचार्य बलि महाराज को दे रहे हैं.
He says the utterance of the word Om signifies separation from one's monetary assets.
तो यहाँ अनुवाद में शुक्राचार्य कहते हैं कि ओम शब्द का उच्चारण ही मनुष्य से धन धान्य के वियोग का सूचक है
In other words, by uttering this word, one becomes free from attachment to money because his money is taken away from him.
दूसरे शब्दों में ओम का उच्चारण करने से मनुष्य धन के प्रति आसक्ति से छूट जाता है क्योंकि उसका धन उससे ले लिया जाता है.
That's interesting because Brahmins are always chanting mantras with Om.
ये बहुत ही रुचिकर है क्योंकि ब्राह्मण सदैव ओम का उच्चारण करते रहते हैं.
But in the Vedic system, the brahmanas would be given hundreds of millions of crores of value in elephants gold jewels sometimes pretty girls also everything you know would be given to brahmanas in the vedic age
aur vedic sanskriti mein vedic samay mein brahmanon ko bahut karodo lakho hathi dhan aabhushan striyan aadi di daan mein di jati thi
but they wouldn't try to keep it
लेकिन वे उसे नहीं रखते थे अपने पास और ब्राह्मण भी आगे इस सब दान को वापस दान कर दिया करते थे ये संस्कृति है वैदिक संस्कृति
So Shukracharya is trying to tell Bali Maharaj, watch out, you're going to end up a poor man, he's going to take everything away, you're going to be bankrupt, and then he's secretly thinking, I'll be out of a job. I won't have sex gratification. I won't have any palace to live in anymore. Nothing. Come on, don't do this. Don't do this. तो my salary won't be cut.
शुक्र शुक्राचार्य भी सलाह दे रहे हैं बलि महाराज को कि आप ये दान मत दो, दान मत दो, ये सब कुछ लूट ले जाएगा, आपका दिवालिया निकल जाएगा। और छिपे हुए रूप में उनकी मानसिकता ये है कि इससे मेरी भी नौकरी चली जाएगी, मेरी इंद्रिय तृप्ति भी चली जाएगी। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि शुक्राचार्य एक ब्राह्मण है। और इसी कारण से वे बलि महाराज के गुरु हैं।
So he continues to be without money is not very satisfactory.
और फिर श्लोक संख्या 41 में वे आगे कहते हैं, किंतु धन विहीन होना ठीक नहीं है।
So we see in his own admission, he's attached to money.
और यहाँ हमें पता लगता है कि उनकी धन के प्रति आसक्ति है।
Whereas a pure Brahmin is not concerned, money or no money.
जबकि एक शुद्ध ब्राह्मण धन के प्रति आसक्त नहीं होता, उसे कोई परवाह नहीं है कि धन है या नहीं है।
Like Krishna's dear friend, Sudama,
जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही परम मित्र सुदामा,
living in total poverty,
जो कि पूरे रूप से गरीबी में रहते थे,
he just accepted that as his lot in life. He never complained.
और उन्होंने कभी भी इसके लिए दोष नहीं निकाला, कभी कंप्लेन नहीं की। और उनके पास कभी कभी खाने के लिए पर्याप्त भी नहीं होता था, इसलिए दोनों पति पत्नी बहुत ही पतले दुबले थे। सामान्यतः स्त्रियां घर के प्रति आसक्त होती हैं।
So she was not very happy with the situation. It was a, you know, too much austerity.
और इसलिए उनकी पत्नी सुदामा की पत्नी भी खुश नहीं थी घर की ऐसी स्थिति को देख करके। और सामान्यतः ये नियम है कि स्त्रियां तपस्या में बहुत ज्यादा निपुण नहीं होती हैं, कुछ कुछ अपवाद होते हैं।
One day she says to Sudama, my dear husband, you got Krishna now your friend and you were schoolmates and now he's in a very big, big position, king, prince in Dwarka. Why don't you go see him? Because he surely will give you a charity and he'll relieve our situation of total poverty.
तब सुदामा ब्राह्मण की पत्नी ने उन्हें सलाह दी कि आप आपके एक मित्र हैं श्री कृष्ण जो कि बहुत बड़े राजा हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वो आपको दान में बहुत सारी चीजें देंगे जिससे कि हमारी गरीबी मिट जाएगी।
But, Sudama was detached. She didn't care. Just whatever the Lord is providing or not providing, it's all right with me. Just, you know, it's up to the Lord whether I have money or don't have money. I'm not going to ask anything.
लेकिन सुदामा ब्राह्मण पूरी तरह से विरक्त थे। वे नहीं सोचते थे कि ये भगवान की इच्छा है कि वो देना चाहेंगे तो दे देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे। तो वे इस तरह से पूरे पूर्ण रूपेण विरक्त थे। लेकिन उनकी पत्नी के साथ ऐसा नहीं था।
Like nowadays, the wife may say to the husband, "Honey, you've got to get a better job. You really have to get a better job."
तो जैसा कि आज के समय पत्नी अपने पति से कह देती हैं कि हे प्रियतम, आपको एक अच्छा जॉब, अच्छी नौकरी प्राप्त करनी चाहिए।
We can't afford to keep the nikes on the feet of our kids unless you get a better job.
तो हम हमारे बच्चों को भी अच्छे वस्त्र नहीं पहना पा रहे हैं। अच्छा होगा कि आप एक अच्छी नौकरी प्राप्त करें।
So this is the modern mentality.
तो ये आधुनिक मानसिकता है।
So she's saying, why don't you just go ask, go see Krishna. Krishna will help you out financially. He's your old friend. He's very wealthy now, king, prince. You know, you just go ask him, you know, for some charity. That's all. Because you're a Brahmin, you can ask for charity, no problem.
तो इसी तरह सुदामा ब्राह्मण की पत्नी भी उन्हें सलाह दे रही हैं कि आप क्यों नहीं अपने पुराने मित्र श्री कृष्ण के पास जाते। अब वे एक राजा हैं और राजा दान देते हैं, तो आप ब्राह्मण हैं, वे आपको भी दान देंगे।
But Sudama didn't really want to ask Krishna for anything.
लेकिन वास्तविकता में सुदामा ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगना नहीं चाहते हैं।
But since his wife was really, really begging him and pushing him, he said, "All right, all right, I'll go see Krishna."
लेकिन उनकी पत्नी उन्हें बहुत ही मजबूर कर रही थी, उन्हें पुश कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अच्छा मैं जाता हूँ श्री कृष्ण के
पास।
तो सामान्यतः ये सदाचार है कि अगर आप किसी से मिलने जाएं तो उसके लिए कुछ उपहार लेकर जाएं। लेकिन सुदामा ब्राह्मण इतने गरीब थे कि उनके पास कुछ चावल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था।
So he just bundled up the rice in a small cloth and then he went off to work to see Krishna.
और इसलिए उन्होंने वो थोड़े से चावल अपने गठड़ी में बांधे और वे द्वारका की ओर भगवान श्री कृष्ण से मिलने निकल पड़े।
He was very poor and unkempt due to living in poverty, so he was not in a very clean, high-class condition when he arrived at the gate.
और क्योंकि सुदामा ब्राह्मण बहुत गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, तो वे जब द्वारका में गेट पर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे, तो वे साफ सुथरे भी नहीं थे।
The gatekeeper tried to bar him from entering.
और तब वहां पे जो दरवाजे पर संतरी खड़े थे, उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। तो उन द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि नहीं, हम भिखारियों को अंदर नहीं जाने देते, आप अंदर नहीं जा सकते। तो किसी तरह से संदेश भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गया, तब द्वारपालों को सुदामा ब्राह्मण को अंदर जाने देना पड़ा।
When Sudama appeared before Krishna, he was ashamed and embarrassed.
तो जब सुदामा ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचे, तो वे बहुत ही लज्जित महसूस कर रहे थे।
So he hid the little bag of cloth with rice and hid it behind his back.
तो उन्होंने उस छोटे सी गठड़ी को जिसमें चावल थे, उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया।
Of course, Krishna recognized him and knew who he was.
तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञात हो गया कि सुदामा ब्राह्मण क्या लाया। और भगवान श्री कृष्ण सुदामा ब्राह्मण अपने पुराने मित्र को देखकर बहुत प्रसन्न थे।
So he welcomed, embraced him, and welcomed him and washed his feet. The picture, the painting is there in Srimad-Bhagavatam.
तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा ब्राह्मण का स्वागत किया, उन्हें गले लगाया, उन्हें बिठाया, उनके चरण का प्रक्षालन किया, और ये फोटो श्रीमद् भागवतम में भी है।
But still, Sudama was holding this little bag of rice behind his back. He was embarrassed.
और क्योंकि सुदामा ब्राह्मण लज्जित अपने आप को महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वो चावल का गठड़ी पीछे छिपा रखा था।
Generally, you're supposed to bring gold and gems and opulent offerings, at least fancy fruits, costly things you're supposed to bring to a prince or a king, not just a little bag of rice,
क्योंकि सामान्यतः ये शिष्टाचार है कि राजा के पास जाते समय कुछ स्वर्ण आभूषण मोती इत्यादि लेकर के जाएं, लेकिन क्योंकि वे सुदामा ब्राह्मण चावल लाए थे, तो इसलिए वो लज्जित महसूस कर रहे थे।
Krishna's God, so he spotted that Sudama had this little bag of rice behind his back.
और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, अंतर्यामी है, तो उन्हें ज्ञात हो गया कि सुदामा ब्राह्मण के पास कुछ चावल लाए हैं। तो उन्होंने सुदामा ब्राह्मण से कहा, ओह मुझे लगता है तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो। लाओ लाओ मुझे दो, मुझे चाहिए वो। तो सुदामा ब्राह्मण ने उनसे क्षमा मांगी कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं मांगा, थोड़े चावल है बस मेरे पास। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं मुझे चाहिए। और उन्होंने वो जो गठड़ी थी वो सुदामा से छीन ली और वो तुरंत ही वो चावल खाने लग गए भगवान श्री कृष्ण, और वो पूरा गठड़ी समाप्त करने वाले थे। और रुक्मिणी जी वहीं पर थी, तो उन्होंने वो ये सब देख रही थी। और क्योंकि वे लक्ष्मी हैं, भाग्य लक्ष्मी हैं, और वे ये देख रहे थे कि भगवान पूरा का पूरा चावल की कटोरी खत्म करने वाले हैं। Or,
don't eat anymore. That's okay. You're taking it up. Don't, you know, it's
और रुक्मिणी जी वहां पर पहुंचती हैं और भगवान को रोकती कि नहीं नहीं आपने पर्याप्त ले लिया है अब और मत लीजिए और रुक्मिणी जी भयभीत थी कि अगर भगवान ने ये सारे चावल खा लिए तो ये इतने भाग्यशाली हो जाएंगे कि भगवान भी इनको उन्हें लौटा नहीं पाएंगे लेकिन सुदामा ब्राह्मण ने भगवान से कुछ नहीं मांगा
So then finally he just offers his obeisances he was just happy to see Krishna and he didn't ask Krishna for anything
और सुदामा ब्राह्मण भगवान से मिलके बहुत प्रसन्न थे वे भगवान को प्रणाम करते हैं अंत में और जाने लगते हैं लेकिन वे भगवान से कुछ भी नहीं मांगते और इस प्रकार वे द्वारका से बिना कुछ लिए कोई भी आभूषण कुछ भी स्वर्ण कुछ भी लिए बिना ही चले चल पड़ते
हैं
और उन्हें इस चीज की भी चिंता नहीं थी कि अब उनकी पत्नी उन्हें डांट लगाएगी कि वे कुछ नहीं लेकर आए और उनसे उम्मीद की जा रही थी सुदामा ब्राह्मण से कि वे द्वारका गए हैं तो कुछ ना कुछ स्वर्ण धन इत्यादि लेकर आएंगे लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांग सके और वे कुछ भी धन गाय इत्यादि बिना लिए ही भगवान से लिए बिना ही वहां से जा रहे थे और इस तरह से सुदामा ब्राह्मण को यह बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि उनकी पत्नी निराश होंगी कि वे कुछ नहीं लाए हैं तो मैं ये कथा इसलिए बता रहा हूं कि उनकी किसी भी प्रकार की सकाम इच्छाएं नहीं थी कोई फ्रूटी मेंटेलिटी नहीं थी उन्हें फल की इच्छा नहीं थी वे भले कुटिया में रह सकते थे लेकिन जब वे अपनी कुटिया के सामने पहुंचे
found out there was a huge palace there Krishna by his mystic power had constructed a huge palace full of incredible opulence and jewels and everything maestros everything huge palace
tab unhe wahan mila ki unki kutiya ke sthan pe bahut bada mahal ban gaya hai aur us mahal mein bahut sare aabhushan hain bahut sari dhan sampada hai भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से यह सब बना दिया था लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा था तो यहाँ पर मूल बिंदु यह है कि अगर आप भगवान के शरणागत होना चाहते हैं भगवान के शरणागत होने की कोशिश भी करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है
Purport of this story. Don't be frugal, but Krishna will help you. And doesn't mean you're going to become a millionaire, but at the same time, you're not going to, you know, simply end up with nothing if you surrender to Krishna.
तो आप इस कथा का तात्पर्य यह है कि आप भगवान को देने से भगवान के प्रति शरणागत होने से प्राप्त ही करते हैं आपको लाभ ही होता है आप कुछ भी खोने वाले नहीं हैं
Point is that Shukracharya was the exact opposite.
और यहाँ पे मूल बिंदु है कि शुक्राचार्य इसके पूर्ण रूप से विपरीत थे इंद्रिय तृप्ति धन इत्यादि के प्रति बहुत आसक्त
So he says to Bali Maharaj, to be without money is not very satisfactory.
इसलिए वे बलि महाराज से कहते हैं कि धन विहीन होना ठीक नहीं है
For in that position one cannot fulfill one's desires. See how fruitful this is.
क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता तो यहाँ से पता लगता है कि वे कितने सकामी हैं
In other words, by using the word Om, one becomes poverty-stricken.
दूसरे शब्दों में ओम शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य विपन्न हो जाता है
Especially when one gives charity to a poor man or a beggar, one remains unfulfilled in self-realization and in sense gratification. So, I mean, out front he's saying I'm interested in celibate Krishna.
तो विशेष आगे अनुवाद है, शुक्राचार्य कहते हैं विशेषतया जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति या भिक्षु को दान देता है तो उसका आत्म साक्षात्कार तथा उसकी इंद्रिय तृप्ति अधूरे रहते हैं.
So then this is why in the 42nd verse Shukracharya is saying therefore the safe course is to say no to his request because you're going to end up in poverty. This is not good, which means I'm going to be out of a job. And I won't have any happiness, I won't have money, I won't have sense of gratification, I won't have a palace, nothing. And so, you know, and neither were you going to have anything, and he's going to take away everything, and so you're a fool.
So, is this continuation, in the 42nd shlok, Shukracharya कहते हैं, अतः सुरक्षित उपाय है कि नहीं कह दिया जाए. तो इससे पता लगता है कि शुक्राचार्य की कैसी मानसिकता है. उन्हें लग रहा है कि भगवान सब कुछ ले लेंगे और ना तो मेरे पास कुछ धन रहेगा, ना महल रहेगा, ना बलि महाराज के पास कुछ भी रहेगा.
So he says, therefore the safe course is to say no. In other words, I'm not going to give you what you're asking for.
तो नहीं कहने का अभिप्राय है कि जो भी आप मांग रहे हैं वो मैं आपको नहीं दे सकता.
Although it is a falsehood, it protects one completely. It draws the compassion of others towards oneself, and it gives one the full facility to collect money from others for oneself. You see this mentality, materialistic mentality.
तो आगे शुक्राचार्य कहते हैं, यद्यपि यह असत्य है, किंतु इससे पूरी रक्षा हो जाती है, इससे दूसरों की सहानुभूति भी मिलती है. और अपने लिए अन्यों से धन एकत्र करने में पूरी सुविधा होती है. तो यहाँ पे ये भौतिकतावादी मानसिकता प्रकट हो रही है.
Nonetheless, if one always feels that he has nothing, he is condemned.
फिर भी यदि कोई सदा यही कहे कि उसके पास कुछ नहीं है तो उसकी निंदा होती है.
For he is a dead body while living or while still breathing, he should be killed. This is a heavy statement. So now he's getting very heavy. Shukracharya is getting very heavy here, suggesting that it's adharma to give in charity if it's going to cut into your sense gratification. It's very he's very off materialist.
तो यहाँ पे शुक्राचार्य बहुत ही बड़े भौतिकतावादी के रूप में कह रहे हैं. फिर भी यदि कोई सदा यही कहे कि उसके पास कुछ नहीं है तो उसकी निंदा होती है, क्योंकि वह जीवित रहकर भी मृत है या उसे जीवित ही मार डालना चाहिए.
So now we'll read from Srila Prabhupada's purport.
अब हम प्रभुपाद के तात्पर्य से पढ़ेंगे.
Beggars always present themselves as possessing nothing, and this may be very good for them because in this way they are assured of not losing their money and of always drawing the attention and compassion of others for the sake of collection.
तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं, भिखारी सदैव अपने को निर्धन रूप में प्रस्तुत करते हैं. यह उनके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि इस तरह से उनका धन नष्ट होने की संभावना नहीं रहती और धन एकत्र करने की दिशा में अन्यों का ध्यानाकर्षण तथा सहानुभूति मिलती है.
But this is also condemned.
किंतु इसकी भी भर्त्सना की जाती है.
Just like in Navadvip Dham, if you're taking the boat to go across the Jalangi.
जैसा कि नवदीप धाम में अगर आप जालंगी नदी को क्रॉस करना चाहते हैं और एक नाव लेते हैं,
there are rows of beggars there.
तो वहां पर बहुत सारे भिक्षु भिखारी बैठे होते हैं.
Very much like you should give them some money.
और वे चाहते हैं कि आप उन्हें कुछ धन दें.
But then you say, okay, so you can give them some money. But the Dhanasar Foni Thakur advised that yes, one should give charity to even to beggars.
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये संदेश देते हैं निर्देश कि हमें भिक्षु को भी भिखारी को भी दान देना चाहिए.
But if they're ordinary beggars, you should make them chant Hare Krishna. If they won't chant Hare Krishna, they're dealing with them, they won't give them that.
लेकिन हमें भिखारियों को हरे कृष्ण जप कराना चाहिए. अगर वो जप नहीं करते हैं तो राक्षस हैं, उन्हें मत दीजिए.
These people in Navadvip Dham are very exalted because they're Vaishnavas in the Dham.
और क्योंकि ये भिखारी भी नवदीप धाम में हैं, तो ये बहुत ही उन्नत हैं, क्योंकि ये धाम में हैं, ये वैष्णव हैं।
But still you give them charity and then they will buy tea and bidis.
और अगर आप उन्हें दान देते हैं, तो वे या तो चाय खरीदेंगे या बीड़ी खरीदेंगे।
So Sukracharya continues, if one purposely continues this professional begging, he is supposed to be a dead while breathing, or according to another interpretation, such a man of falsity should be killed while still breathing.
आगे तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, यदि कोई जान बूझकर भिक्षा को पेशा बना लेता है तो वह जीवित ही मृत माना जाता है, या अन्य दृष्टिकोण से ऐसे झूठे व्यक्ति को जीवित ही मार देना चाहिए।
The Vedic injunction in this regard is as follows: Atai tat purnam abhyatmanam yam neti savyat sarvam neti bhuyat apikasya kirtir jayate shainam tatraiva anyat. If one continuously poses himself as possessing nothing, collects money by begging, he should be killed.
इस संबंध में वैदिक आदेश इस प्रकार है, अतः तत् पूर्णम अभ्यात्मम यन नेति सयत सर्वम नेति ब्रूयात पापिकास्य कीर्ति जायते सैनम तत्रेव हन्या। यदि कोई निरंतर निर्धन होने का स्वांग करे और भीख द्वारा धन संचित करे तो उसका वध कर देना चाहिए।
So we'll read the 43rd verse also.
अब हम 43 श्लोक भी पढ़ेंगे।
In flattering a woman to bring her under control.
अनुवाद इस प्रकार है, अपने वश में लाने के लिए किसी स्त्री से चिकनी चुपड़ी बातें करने में।
In joking in a marriage ceremony.
हास परिहास में, विवाह उत्सव में।
In earning one's livelihood.
अपनी जीविका कमाने में।
When one's life is in danger.
प्राणों का संकट उपस्थित होने पर।
In protecting cows and Brahminical culture.
गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने।
Or in protecting a person from an enemy's hand.
या शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में।
Falsity is never condemned.
असत्य भाषण को कभी निंदनीय नहीं माना जाता।
So Sukracharya is trying to make it paint the picture that this is an emergency, and so therefore you should lie.
तो यहाँ पर शुक्राचार्य इस तरह से घटना बना रहे हैं कि ये एक इमरजेंसी है और आप यहाँ पर झूठ बोल सकते हैं।
बलि महाराज is a grandson of Prahlad Maharaj.
किंतु बलि महाराज प्रहलाद महाराज जी के पोते हैं।
So although he is playing the role of a demon, actually in his blood, so to speak, is Vaishnava.
लेकिन यहाँ पर भले ही वो एक असुर राज का किरदार कर रहे हैं, उनकी भूमिका में हैं, लेकिन उनके रक्त में एक भक्त, एक वैष्णव का रक्त है।
So when he realizes that his so-called guru is actually deviating from Sanatana Dharma, then he rejects. He refuses to follow Shukracharya.
और जब बलि महाराज ये देखते हैं कि उनके गुरु एक वैष्णव संस्कृति से अलग हो रहे हैं, उनसे डेविएट हो रहे हैं, तो वे उनको त्याग देते हैं।
Well, this is an example of when a guru should be rejected, when it's clear, according to Shastra, that personality is deviating from pure dharma, then they must be rejected.
तो ये एक उदाहरण है कि जब कोई एक सनातन धर्म से, शुद्ध सनातन धर्म से कोई डेविएट हो रहा है, कोई विचलित हो रहा है, तो उसका त्याग किया जा सकता है, उस गुरु को त्याग कर सकते हैं।
So Srila Rupa Goswami, he is teaching the path of pure devotional service.
Srila Rupa Goswami शुद्ध भक्ति का मार्ग बतलाते हैं।
It's made very clear in the nectar devotion.
और ये भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने बताया है।
His full Sanskrit name is Bhakti Rasamrita Sindhu.
और उस ग्रंथ का संस्कृत में नाम है भक्ति रसामृत सिंधु।
तो जो
भक्ति की, शुद्ध भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी ने दी है, वो सुदामा ब्राह्मण पे पूरी तरह से लागू होती है और शुक्राचार्य पर बिल्कुल नहीं।
So recite Srila Rupa Goswami's shloka. If you know it, then you can recite it along with us.
और अगर आप वो श्लोक शुद्ध भक्ति की परिभाषा का श्लोक जानते हैं तो हमारे साथ दोहरा सकते हैं.
That one should understand what is pure devotional service.
तो हर किसी को समझना चाहिए कि शुद्ध भक्ति क्या है.
अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माद्यनावृतं अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमम्.
So here is a definition given by our acharya, a founder acharya under topmost disciple of Srila Chaitanya Mahaprabhu. What is the definition of pure devotional service? This we have to take this.
तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे वरिष्ठ शिष्यों में से हैं, वे शुद्ध भक्ति की परिभाषा देते हैं जो हमें समझनी चाहिए.
So the goal of self-realization is not attained by ज्ञान, not just by knowledge.
तो आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य ज्ञान या फिर योग से प्राप्त नहीं होता है.
Not by yoga.
ना ही योग से.
Not by fruitive activity.
ना ही fruitive activity. सकाम कर्मों से.
But only by pure devotional service, only by surrendering to Krishna.
सिर्फ और सिर्फ यह शुद्ध भक्ति से और भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत होने से यह लक्ष्य मिलता है.
So we are known as Rupa Dugas. We are following in the line of Shri Rupa Goswami.
और हम रूप अनुगा कहलाते हैं क्योंकि हम रूप गोस्वामी जी के पद चिन्हों पर उनकी परंपरा में आते हैं.
So we have to take the example from Sudama the Brahman, not the example from
तो हमें सुदामा ब्राह्मण जी के उदाहरण से सीखना चाहिए, शुक्राचार्य के उदाहरण से नहीं. शुक्राचार्य पूर्ण रूपेण ऑफ थे.
I'm not suggesting if you're a married man or a woman that you have to live in poverty in order to be Krishna conscious. I'm not saying that.
मैं यह नहीं.
I've never said like that. Never said like that.
मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो यहाँ पर विवाहित पुरुष और स्त्री गृहस्थ आश्रम में हैं कि उन्हें पूर्ण रूपेण गरीबी में रहना चाहिए. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ना ही प्रभुपाद ने ऐसा कभी कहा.
Wealthy persons who gave generously to Srila Prabhupada to help push on this movement.
तो कई धनी व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रभुपाद की मदद की प्रभुपाद के आंदोलन को आगे बढ़ाने में.
The point is that money has to be used properly.
यहाँ पर मुख्य बिंदु यह है कि धन का सही उपयोग होना चाहिए.
If you have money and you don't use at least a portion of it for devotional service, then you are crippled.
अगर आप भक्ति के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए अपने धन का उपयोग नहीं करते हैं तो आप कृपण कहलाते हैं.
Same word in English, yes. Don't be crippled.
कृपण मत बनिए, कंजूस मत बनिए.
Nowadays people are very dishonest, and I'm talking about congregation now. This kind of congregation are not honest with themselves. They live in a fantasy land. Oh yes, I'm devotee. I love Krishna. Everything's fine. But oh, can you give a donation? Well, times are tight.
आज के समय जो इस्कॉन का congregation है, वो भी काफी हद तक इस मानसिकता में है कि जब वे अभी अपने आप को मानते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं, लेकिन जब दान के लिए कहा जाता है तो वे कहते हैं अभी बहुत कठिनाई चल रही है. तो वे कहते हैं कि अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, मैं अगली बार दान करूंगा.
With his wife's family and his family, an extended family on both sides, and cousins and their cousins' children, you know, and they all get together, you know, 20 people, and they go out to dinner at a 5-star hotel.
तो वही व्यक्ति जो दान देने के लिए मना कर रहा है, वो अपनी तरफ के अपने भाइयों बहनों, अपने माता पिता और अपनी पत्नी की तरफ के माता पिता, भाई बहन सभी के साथ में एक 5-स्टार होटल में रात्रि के समय खाना खाने जाएगा. और मुझे
not demons, devotees.
मुझे कई भक्तों ने बताया है कि ये कई ऐसे गृहस्थ हैं जो अपनी बढ़ी हुई इस पूरे परिवार के साथ में पहले खाना खाने 5-star होटल में जाते हैं और फिर बहुत बड़े सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखते हैं। और वे एक ही रात्रि में 10,000 से 15,000 रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन जब उनसे भक्त लोग 2,000 रुपए मांगते हैं तो वे कहते हैं नहीं अभी समय बहुत कठिन चल रहा है तो आप ऐसा मत बनिए, शुक्राचार्य की तरह मत बनिए। भगवान को धोखा देने का प्रयास मत कीजिए, धूर्त मत बनिए। प्रभुपाद कहते थे भगवान श्री कृष्ण को धोखा देने का प्रयास मत करो क्योंकि वे आपसे भी बड़े धोखेबाज हैं। भगवान नंबर वन चीटर है।
So, everybody knows Krishna's cheater.
हर कोई जानता है कि भगवान धोखा देते हैं।
Just like in the battle of Kurukshetra, he vowed he would not get taking sides in the battle of Kurukshetra, you know.
जैसा कि उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध में ये घोषणा की थी कि वे किसी भी पक्ष का साथ नहीं देंगे, युद्ध नहीं करेंगे।
भीष्मदेव knew this.
और भीष्मदेव भी ये जानते थे।
He was determined to make Krishna break his vow.
लेकिन भीष्मदेव ने भी ये संकल्प लिया कि वे भगवान श्री कृष्ण को वे भगवान श्री कृष्ण को हथियार उठाने पर मजबूर कर देंगे और वे कई ऐसे अपशब्द कह रहे थे भगवान को।
You are too sympathetic to these Pandavas. They are the enemy, but you are going easy on them because of your prior relationship. So what is this nonsense? You know, you're not faithful to me. You're faithful to our enemy. Talking like this,
दुर्योधन क्षमा कीजिएगा, भीष्मदेव नहीं कह रहे थे, दुर्योधन भीष्मदेव को कहते हैं कि आप पांडवों के प्रति बहुत आसक्त हैं, आप पांडवों की को कुछ भी चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, आप उनसे सही प्रकार से युद्ध नहीं कर रहे हैं।
So, Kshatriyas are very proud, you know, they cannot handle this kind of nasty fighting language insults, they cannot take that. You cannot insult a Kshatriya, they will fight it.
और क्षत्रियों में बहुत गर्व होता है, वो कभी भी अपमान नहीं सहन कर सकते, आप उनको अपशब्द नहीं कह सकते।
So then Bhishmadev said, "All right, today I will kill Arjuna."
तो इसलिए भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ली, अच्छा मैं आज ही अर्जुन का वध कर दूंगा।
So then he fought extra hard, because after all he was a master, he was old man supposedly, but he was Maharati, strength of 10,000 elephants.
हालांकि भीष्मदेव एक बुजुर्ग व्यक्ति थे लेकिन उन वे महारथी थे, उनमें 10,000 हाथियों का बल था।
So he was fighting with all his strength and he was a super warrior and he was a teacher, he was a professor of the Pandavas, he taught them how to fight, you know.
और क्योंकि भीष्मदेव परम योद्धा थे, वे उन्होंने ही पांडवों को सिखाया युद्ध करना।
So actually Arjuna was in difficulty because Arjuna was going to be in difficulty because Bhishmadev was fighting so strongly that he was going to actually be able to kill Arjuna, so that Krishna would not tolerate it.
और इस तरह से अर्जुन कठिनाई में पड़ गए थे क्योंकि भीष्मदेव बहुत ही कौशल के साथ में पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण को भी ये लगा कि अर्जुन कठिनाई में आ गए हैं।
So he stepped in and he took up that chariot wheel and he came against Bhishmadeva and he was ready to kill Bhishmadeva with the chariot wheel.
और फिर भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया और वे भीष्मदेव को की हत्या करने के लिए उस रथ के पहिये को उठाकर दौड़े। और फिर एक बहुत ही सुंदर चित्र भी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण रथ का पहिया उठाकर भाग रहे हैं और अर्जुन उनके पैरों को पकड़े हुए हैं कि नहीं नहीं आप भीष्मदेव को मत मारिए।
So therefore he was pulling on Krishna's leg, no, and tried to stop him.
और अर्जुन जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण भीष्मदेव का वध कर देंगे, तो इसलिए अर्जुन उन्हें मना कर रहे थे, नहीं नहीं आप भीष्मदेव को मत मारिए। और बहुत ही सुंदर ये चित्र बनाया गया है, और कई जगह पे हम ये डायरामा भी देखते हैं जहाँ पे ये चित्र को ही डायरामा में बनाया गया है।
So, Krishna's tricky.
तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण छल करते हैं।
So, therefore, in the Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna,
इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
you may declare it boldly that my devotee never perishes.
इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आप ये घोषणा करिए कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता।
Now, he has to back it. Then Krishna has to back it. Arjuna says, okay, then I have to back it.
और भगवान श्री कृष्ण को यह अर्जुन से कहलवाना पड़ा कि अर्जुन आप कहिए।
So we are meant to stick with this path, your devotional service as close as possible in the mood of Bhagavan Maharaj and not in the mood of Shukracharya.
तो हमें शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चलने का प्रयास करना चाहिए, नजदीक से नजदीक चल सके, और हम बलि महाराज के मूड उनकी मानसिकता के रूप में हमें चलना चाहिए, ना कि शुक्राचार्य की मानसिकता से।
Anybody have any question?
किन्हीं का कोई प्रश्न है?
Yes.
हरे कृष्ण, दो क्वेश्चन है। पहला ये कि जैसे महाराज ने कहा कि शुक्राचार्य जी शिव परम वैष्णव शिव के अवतार हैं, तो शिव जी परम वैष्णव है, तो शुक्राचार्य जी वामन महाराज के वामन भगवान के अनिष्ट में क्यों है, उनका ऐसा चरित्र क्यों दिखा रहे हैं कि वो वामन भगवान के उसमें?
भगवान शिव भगवान विष्णु के विरुद्ध नहीं है, ये एक लीला है।
Have you read Krishna book?
क्या आपने कृष्ण पुस्तक पढ़ी है?
At least three times there's fight between Lord Shiva and Krishna. At least three times.
कम से कम तीन बार भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच में युद्ध है।
And Lord Shiva always loses.
और हर बार शिव जी हार जाते हैं। और शिव जर जो जो हथियार है उसे नारायण जर के समक्ष उसे नारायण जर से हार माननी पड़ती है और उसे दंडवत प्रणाम करने पड़ते हैं। तो ये भी एक लीला है और भगवान इस लीला से कुछ सिखा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये सिखाना चाहते हैं कि शास्त्रों में यह ज्ञान दिया गया है कि हमें शुक्राचार्य की मानसिकता नहीं धारण करनी चाहिए।
So for that he uses his devotee role playing.
तो इस शिक्षा को देने के लिए वे अपने भक्तों को प्रयोग करते हैं कि वे किरदार निभाएं।
Don't do like this. So not ordinary person is going to interact with Lord Krishna.
तो कोई भी साधारण व्यक्ति भगवान विष्णु के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उनसे नहीं मिलजुल कर सकता है।
So he's using, Lord Shiva is taking that position just to show who's really going to win and who's really going to win is the devotee of the Lord.
तो भगवान शिव ये किरदार निभाते हैं कि वे इस घटना में आते हैं कि कौन जीतेगा।
There may be setbacks. There may be temporary defeat.
हो सकता है कि क्षणिक रूप से भगवान हारे।
Like in Russia, our movement has been temporarily defeated by demoniac forces.
और जैसा कि रूस में कई सारे असुरों की सेना की वजह से हमारे जो आंदोलन है इस्कॉन का आंदोलन उसे नुकसान हो रहा है।
In the long run, they can't win.
लेकिन लंबे समय में देखा जाए तो वे नहीं जीतेंगे, असुर नहीं जीतेंगे।
In in Siberia, which is to the east of Russia, you know, it was in Siberia, the government under the influence of the Roman Catholic Church, they tried to ban the Bhagavad Gita.
तो जैसा कि पूर्वी रशिया, पूर्वी रूस, जहां साइबेरिया है, तो वहां पर जो गवर्नमेंट थी, वहां पे जो सरकार थी, वे रोमन कैथोलिक चर्च के निर्देशन में वे भगवत गीता को बैन करना चाहते थे, बंद करना चाहते थे।
Usually published all over the former Soviet Union how they were trying to ban the Bhagavad Gita in Siberia, and it was published with high media event all over the former Soviet Union.
तो जो पहले सोवियत रूस था, उसमें ये पूरी जगह ये प्रचार किया गया कि किस तरह से साइबेरिया में भगवत गीता को बैन किया जा रहा है। लेकिन रूसी लोग बहुत ही बुद्धिमान होते
हैं।
लेकिन रूसी व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, वे अन्य लोगों की तरह नहीं होते कि जो भेड़ चाल चले।
So the Russians said, "Oh, so you're banning this book, huh? Government is banning this book."
तो रूस के जो साधारण व्यक्ति थे, उन्होंने देखा कि ये जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं, वे भगवत गीता को बैन करना चाह रहे हैं।
Long history, they suffered under the government, you know.
तो ये एक लंबा इतिहास है कि किस तरह से उन्होंने रूस के लोगों ने इस सरकार
they didn't trust the government decision.
तो किस तरह से लंबे समय तक रूस के साधारण व्यक्ति रूस के राजनेताओं से उन्होंने कष्ट झेले।
So government is banning the book.
तो उन्होंने ये सोचा कि जो सरकार है वो
right or wrong. Let me read the book and I'll decide whether they're right or wrong. This is the mentality. They're intelligent, so they say, "Well, I don't trust this government. Maybe they're right, maybe they're wrong. I'm going to read the book myself and find out."
तो रूस के साधारण व्यक्ति ने ये सोचा कि अच्छा, सरकार ये भगवत गीता बैन करना चाहती है, तो मैं देखता हूँ कि ये बुक क्या है, भगवत गीता सही है या गलत है। मैं सरकार की बात नहीं मानूंगा, मैं खुद निर्धारित करूंगा कि ये बुक बैन होनी चाहिए या नहीं, मैं पढ़ूंगा।
Well, I went to find out about this book, what they're trying to ban here. Oh, this is very nice. And so I made devotees. So there's so many devotees in the former Soviet Union, you know, thousands and thousands.
तो इस सरकार की इस घटना से ही साधारण लोग भी भगवत गीता पढ़ने लगे और लाखों करोड़ों भगवत गीता वहां पर वितरित हुई, जिससे सभी लोगों ने भगवत गीता पढ़ी।
This is the Lord's long-standing pastime that there are setbacks and then there are victories.
तो ये भगवान की लीला होती है कि पहले भक्तों को नुकसान होता है और बाद में बहुत प्रचार होता है। और शुक्राचार्य भी इसी तरह का किरदार निभा रहे हैं। वे भगवान की लीला को, भगवान के प्लान, योजना, भगवान की योजना को पूरा करने में मदद कर रहे हैं, जिससे कि वामन लीला हो सके। किन्हीं और का कोई प्रश्न?
धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, जैसे कहा, जीविका कमाने के लिए भी कोई झूठ का सहारा ले सकता है, कि शास्त्रों में प्रमाण है इसका, या ऐसा कैसे?
शास्त्रों में कई उदाहरण हैं कि जहां पर चीटर्स या फिर धोखेबाज लोगों ने ऐसा किया हो,
जैसा कि पुंडरक का एग्जांपल आता है, पुंडरी।
पौंडर
आई एम द रियल लॉर्ड विष्णु
तो पौंडर की कह रहा था कि मैं वास्तव में विष्णु हूं
सेंड अ मैसेज टू कृष्णा यू सरेंडर योर डिस्क टू मी एंड आई एम द रियल लॉर्ड विष्णु सो क्रेजी मैन सो इज आस्किंग दिस फ्रेंड सो he wants to make money then off of being fake krishna
तो वे भगवान श्री कृष्ण से पौंडर कहता है वह एक पागल था वह कहता है कि आप अपने चक्र को मुझे दे दीजिए
so krishna sends back a message says i'll surrender my chakra to you no problem i'll do so by cutting your head off which he did
तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह संदेश भिजवाया कि मैं अपना चक्र आपको दूंगा और मेरे चक्र से सर काट कर मैं आपको अपना चक्र दूंगा
but this cheating business has been going on cheating it's called dharma kaitava this is why the Srimad Bhagavatam begins dharma kaitava you see that this bhagavata prana is kicking out cheating religion this is why it begins like that you understand
यह एक कैटर धर्म है और धोखा देना धोखाधड़ी करना यह कैटर धर्म है इसलिए भागवतम जो शुरू होता है वो इन कैटर धर्मों को सभी को लात मारती है
all kinds of cheating in the name of religion and this bit cheating in the name of religion has been going on since time immemorial it's not something new only in Kali Yuga gets worth the brahman is sitting there next to a shivalinga and then he's smoking vidai and he's collecting money and he's using it for his daughter's wedding these things are going on
now
but this has been going on this kind of cheating has been going on since time immemorial
और धर्म के नाम पर धोखाधड़ी बहुत समय से है आज के समय जैसा हम देखते हैं कि कोई ब्राह्मण शिवलिंग के पास में बैठा होता है और बीड़ी पी रहा होता है और धन एकत्रित करता है अपनी पुत्री की शादी के लिए
तो another pastime involving Lord Shiva is daksha he was such a materialistic cheater like that collecting opulence for his own sense gratification in the name of religion So he also a cheater,
और जैसे कि शिवजी के ससुर दक्ष का भी उदाहरण आता है शास्त्रों में कि वो भी धोखाधड़ी कर रहे थे वो भी धन एकत्रित कर रहे थे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए
Have you read Bhagavatam?
क्या आपने भागवतम पढ़ा है
story of Daksha?
आपने दक्ष कथा पढ़ी है दक्ष जी की दक्ष की कथा आपने सुना है लेकिन आपने प्रभुपाद की पुस्तक में नहीं पढ़ा है
Your homework assignment is you read the whole story of Daksha then you will understand yes cheating is going on in the name of religion since the very beginning of creation
तो जब आप यह भागवतम में यह घटना पढ़ेंगे दक्ष की कथा तो आप समझेंगे कि सृष्टि के प्रारंभ से ही धोखाधड़ी चल रही है
Anything else?
और किसी का कोई प्रश्न
Okay, thank you very much. Jaga Guru Srila Prabhupada ki jai. Granchala Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Bhagavan Krishna Balaram ki jai. Itai Gopa Manandi Hari Hari Bolo.
Param Pujani Bhakti Madhuri Govind Goswami.